ओम शांति। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, चिंता सब दूर हो जाएंगी। तो आज आप सभी राज ऋषि तपस्वी मूरत अधर कुमार भाई जब बाबा के घर में बैठे हो और तीन दिन से लगातार आज आपका चौथा दिन पट्टी के अंदर तप रहे हो, ऐसा लग रहा है आप सभी एकदम संतुष्ट होकर के एकाग्रता और अलर्ट के साथ पट्टी के हर क्लासेस और योग तपस्या के अंदर अटेंशन देकर के अपने जीवन को जो भी कमी या कमजोरी है उसको यहाँ ही छोड़ करके संपूर्ण बनने का लक्ष्य रख करके जा रहे हो। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे आदरणीय संतोष दीदी और गीता दीदी के साथ आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न का ऐसा समाधान आप सभी को मिलेगा जो यहाँ से प्रश्न चित होकर के हम सभी खड़े होंगे। तो दीदी एक प्रश्न आया है हमारी संतोष दीदी से, मैं प्रश्न करती हूँ जो आपके तरफ से आया है। अभी तो दीदी यहाँ पर हमें बहुत ही हिम्मत उमंग और उत्साह रहता है और ऐसा लगता है हम एकदम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और बाप के समान बनेंगे, लेकिन जब यहाँ से गृहस्थ में जाएंगे नौकरी आदि में जाते हैं तो वो उमंग उत्साह कायम रहे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न है।
ओम शांति। आज भी बाप दादा हम बच्चों को साथ और संग की बात बता रहे थे। बाबा के साथ और बाबा के समीप रहने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर तो सदैव बाबा का ही रंग चढ़ा हुआ होता है, बल्कि कोई कहां भी चला जाए। वास्तव में देखा जावे तो जैसी हमारी अवस्था होती है वैसा ही वातावरण बनता है। हाँ ये जरूर है कि आप माइनॉरिटी में होते हैं और वहां उनका जोर मेजॉरिटी में होता है, इसीलिए यहां से जो आप लोग बैटरी चार्ज करके जा रहे हैं अगर उसको कंटिन्यू रखेंगे, अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो आपको वहां के वातावरण का कोई भी असर नहीं होगा। प्रोग्राम के अनुसार हमारी प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रोग्रेस उन्नति सदैव होती रहे, नहीं तो सिर्फ प्रोग्राम को देख करके हमने प्रोग्रेस किया और उसके बाद प्रोग्राम पूरा हुआ तो हमारी उन्नति भी पूरी हो गई। जैसा कहते हैं गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना दास, तो ऐसी स्थिति जो है ऐसी स्थिति वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान के समय हमारी स्थिति ये कोई अच्छा नहीं है। अगर हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, अपने ऊपर ध्यान रखते हैं और जो भी युक्तियां बताई हैं उन युक्तियों को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर ये जो संग के रंग की कमी है ये स्वतः ही निकल जाती। भले आप कितनों में भी रहो परंतु आप सदैव ये याद रखो कि मैं तपस्वी कुमार हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला हूँ, तो मैं समझती हूँ उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जो रंग पक्का होता है उसके ऊपर दूसरा रंग कभी नहीं चढ़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ से आप अपने रंग को ईश्वरीय रंग को पक्का करके जाओ तो किसी की ताकत नहीं है आपके ऊपर अपना रंग चढ़ावे, उल्टा आप ही अपना रंग उनके ऊपर चढ़ा करके उनको वापस लेके आ। ओम शांति।
पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है, क्या पत्नी का हाथ का खाना चाहिए?
अभी प्रवृत्ति में रहते हैं, वो ज्ञान में नहीं चलती हैं, परंतु आपके सहयोगी तो जरूर है, इसीलिए तो आप वो नहीं चलती है और आप चलते चलते हैं का मतलब आप पवित्र रहते हैं, यही हुआ ना अर्थ। तो आपको पवित्रता का अगर वो सहयोग देती है तो बाबा की याद में उसके हाथ का खाने में कोई हर्जा नहीं।
अच्छा गीता दीदी, आपसे ज्ञान अविनाशी है, उसकी प्राप्ति भी अविनाशी है, अमृत वेला करने के बाद सो जाने से याद विनाशी कैसे हो सकती है? इस विषय में बाबा क्या उत्तर देते हैं कृपया बताएं।
भाई ने बहुत अच्छा ज्ञान देकर हमें प्रश्न पूछा है कि बाबा अविनाशी है, ज्ञान अविनाशी है, अमृत वेला योग करने के बाद हम सो जाएं तो वो याद खत्म कैसे हो जाएगी? याद खत्म नहीं होती है, वो तो जो अभ्यास आपने किया वो आप में शक्ति भरता है, पर वो कहने का भावार्थ ही ये है कि वो अभ्यास करने के बाद या वो याद का सुख लेने के बाद अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं सेवा में, सेवा की प्लानिंग या कोई भी मंथन करते हैं, तो वो बहुत अच्छी उस समय हमें टचिंग होती है, पर जिनको दिन में आराम नहीं मिलता है या कोई तबीयत का कारण है, तो आप योग के बाद आधा घंटा लेट गए, रिलैक्स हो गए, तो इससे योग खत्म नहीं होता है। बड़ी दीदी जिससे मैंने खुद पूछा था, क्योंकि मुझे भी अमृत वेला अरे सिरदर्द बहुत होता है, तो शुरू शुरू में ही मैंने पूछा था अगर आधा घंटा हम रिलैक्स नहीं करते हैं तो फिर सारा दिन सिर भारी रहता है, मुरली क्लास में भी नींद आएगी। तो बड़ी दीदी ने उस समय कहा था कि तुम्हारा बचपन से ही सिर दर्द है और तकलीफ होती है, तो तुम आधा घंटा लेट जाओ। पर तकलीफ है और लेट जाना, दिन में आराम नहीं मिलता है और आधा घंटा आराम कर लेना, वो एक अलग बात है, उसमें कोई हर्जा नहीं। पर जिनको दिन में भी आराम मिलता है और उसके बाद भी और नींद चाहिए, तो लक्ष्य रखें कि हम ना सोएं, ताकि उस याद का प्रभाव कर्म तक ज्यादा रहेगा, उसमें वो परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। और कुछ नहीं है, खत्म नहीं होता है, बाबा की याद की शक्ति सदा रहती है।
अभी एक प्रश्न गीता दीदी आया है कि ब्रह्मा बाबा के अलावा कितनी आत्माएं हैं जो अभी भी सूक्ष्म वर्तन में बाबा के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग कर रही है, और कई कई बहनें ऐसे कहती है कि हमारे में मम्मा आती है, तो वो क्या? संतोष दीदी जी आप बताएंगे, कोई कोई बहनें कहती है मेरे में मम्मा आती है, तो उस पर आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे।
शुरू शुरू में बाबा जब बॉम्बे में आए थे, हम लोग रोज बाबा की मुरली सुनने को जाते थे, बाबा अलग स्थान पर ठहरे थे, हम बच्चे तो सब अपने अपने सेंटरों पर थे, और हम रोज बाबा की मुरली सुनने को जाते थे। उस समय एक मत्था फिर वो ऐसा व्यक्ति निकला, वो बोला अभी ब्रह्मा का पाठ पूरा हो गया और मेरा पाठ चालू हो गया, मेरे में शिव बाबा आना चालू हो गया बोला। तो ये ऐसे कोई ना कोई आत्माएं निकलती हैं, जिनको आती है कौन भटकने वाली आत्माएं, कोई ना कोई आती है, फिर वो अपने को मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण पता नहीं क्या क्या कहला करके अपनी पूजा करते, कोई देवियां कहलाते अपने को, तो इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मम्मा बाबा ऐसा कहां जाते नहीं है, उनको जाने की जरूरत नहीं। बाकी सूक्ष्म वतन में कितनी आत्माएं हैं बाबा के साथ, बाबा ने अभी तक गिनती नहीं बताई है, बताने के बाद हम आपको बता देंगे।
अच्छा अभी गीता दीदी, अगर कोई नॉन बी के बच्चे फॉर एग्जाम्पल रुपया 100 यज्ञ में देते हैं, उन्हें पद्मा पदम भाग्य मिलेगा या कर्म के हिसाब से 100 रुपये ही उसको वापिस रिटर्न मिलेंगे?
देखो दूसरे की चिंता ज्यादा है, अभी भी खुद की चिंता नहीं है कि हमारा हिसाब क्या बन रहा है, बाबा कितना हमें देता है, यज्ञ कितनी पालना करता है, उसके सामने हमारे तरफ से क्या जमा होता है, हमें अपना ही हिसाब देखना है। बाकी भगवान किसी का भी रखता नहीं है, एक अच्छा इंसान भी किसी का रखता नहीं है, किसी के इतने सहयोग का वो भी इतना रिटर्न करता है, तो बाबा भी ज्ञानी है या अज्ञानी है वो नहीं देखता है। इस सीजन में संगम के समय जो भगवान के कार्य में मदद करेगा उसको अनेक गुना मिलेगा ही।
अच्छा और एक प्रश्न, कल एक क्लास में सुना था कि जो भी पाप कर्म आप करते हो दीदी, तो वो दो या दो से अधिक लोग पाप कर्म करने में शामिल होते हैं। कोई भी पाप कर्म होता है तो एक से नहीं लेकिन दो या दो से अधिक उसमें शामिल होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसके लिए हम क्या समझेंगे, एक पाप में शामिल है या ज्यादा है, उसको ही भोगना पड़ेगा वो कर्म का फल?
ऐसा है कि वो व्यक्ति ने सुसाइड क्यों किया, किसी ने तंग किया, टॉर्चर किया, अन्याय किया, दुख दिया, कुछ तो कारण बना, तो जो भी जिस रीति से इन्वॉल्व होगा उन सबका हिसाब तो बनेगा ही।
अच्छा दीदी एक प्रश्न और आया है, विकर्म विनाश हमारे हो रहे हैं, उसकी निशानी क्या होगी, हमें कैसे मालूम पड़ता है कि हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं?
जैसे जैसे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे वैसा वैसा हमारे अंदर हल्कापन आता जाएगा, हम डबल लाइट बनते जाएंगे। किसी के सिर पर से अगर बोझा उठाया जाता है तो क्या होता है, उसको हल्कापन आता है और उसकी चलने की स्पीड बढ़ जाती है। तो हमारे भी विकर्म विनाश होते हैं तो हल्कापन आता है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है और हमारा ईश्वरीय मार्ग पर चलने की स्पीड बढ़ती है और हमारी खुशी बढ़ती है, क्योंकि बोझा हल्का हो जाएगा तो खुशी बढ़ेगी, हल्कापन आएगा हम स्पीड से भागेंगे, हमारा लक्ष्य हमारे को सामने दिखाई पड़ेगा।
अच्छा दीदी एक प्रश्न और आया है, जब जब मैं मधुबन में आता हूँ घर वाले ज्ञान में नहीं है तो वो बहुत नाराज होते हैं, तो क्या ये मैं कोई गलत करता हूँ?
आपके मधुबन आने से वो नाराज इसीलिए होते हैं, आप जैसे आते हो वैसे ही वापस चले जाते हो, कुछ परिवर्तन करके जाओ तो वो खुश हो गए आपको देख के, और आपका परिवर्तन देख के वो भी इधर आवे, तो एक बार उनको इधर ले आओ, पर उसके पहले आप अपना परिवर्तन करके जाओ, नहीं तो समझते ये फालतू अपना काम धंधा छोड़ के गया, खर्चा करके आया और जैसा था वैसा ही रहा, तो इसीलिए हमारा परिवर्तन जो है वो ही औरों को आकर्षित करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी एक प्रश्न आया है, क्या अधर कुमार की तुलना में कुमार ज्यादा श्रेष्ठ है? एक इंसिडेंस लिखा है दीदी इसमें कि हम सभी साथ में अभी यात्रा कर रहे थे तो उसमें कुछ अधर कुमार को उसके दौरान कोई अप्रिय घटना अधर कुमार के साथ हुई, तभी एक कुमार मुझसे पूछता है वह कुमार है या अधर कुमार जिसके साथ अप्रिय घटना घटी, तो मैंने उसको कहा अधर कुमार है, तो वो कुमार भाई का कहना था अधर कुमार है ना, इसीलिए ही ऐसा हुआ, अगर कुमार होता तो नहीं होता। तो कृपया बताए कि क्या यह सही है? माना दीदी यह कहना चाहते कि दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे, अधर कुमार के साथ कोई अप्रिय घटना घटी उसी समय यात्रा करते करते, तो वो जो कुमार भाई था उसने ऐसे कहा कि वो अधर कुमार है ना, इसीलिए उसके साथ ऐसी घटना घटी, अगर वो कुमार होता तो यह घटना नहीं होती। तो उसका कहना था कुमार अच्छे है अधर कुमार के तुलना में, तो क्या यह सही है?
ये तो उसकी व्याख्या हो सकती है, कुमार अच्छे है और अधर कुमार अच्छे नहीं। वास्तव में देखा जावे तो अधर कुमारों को शाबाश देनी चाहिए जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी और साथ में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं, जो साधु सन्यासियों को भी चैलेंज करते हैं, तो शाबाश तो उनकी है। बाकी अगर कोई घटना हुई होगी तो घटना तो किसी की भी हो सकती है, कुमारों की भी हो सकती है, अधर कुमारों की भी हो सकती है, उससे कोई अधर कुमार या कुमार का कोई कनेक्शन नहीं है, एक दो से दोनों भी श्रेष्ठ है। आप सभी ब्रह्मा कुमार हैं, कोई अधर कुमार वगैरह नहीं। अभी गीता बहन ने बोला ना ब्रह्मा बाबा भी तो अधर थे,
ब्रह्मा बाबा कौन थे, अधर कुमारी तो थे।
आप लोगों ने तो ब्रह्मा बाप को फॉलो किया है ना, इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो।
अच्छा। और ये बार बार ज्यादा कॉन्शियसनेस होना कि हम कुमारे कुमारे, ये भी दे अभिमान है।
तो अभी पवित्रता के लिए एक प्रश्न आया है दीदी, मेरे घर में मैं अकेला ज्ञान में चलता हूँ, मेरे युगल ज्ञान में नहीं चलती, तो पवित्रता के लिए वो बहुत ही मुझे टिक टिक करती रहती है और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती है, तो उसी समय मुझे अपनी स्थिति को अचल बनाने के लिए, हलचल में न लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये करीबन 5-10 भाइयों के यही प्रश्न आया है, 10 भाइयों के।
देखो ये तो 5-10 भाइयों का प्रश्न है, माताओं के तो 500 माताओं का प्रश्न है कि हम पवित्र रहना चाहते पर हमारे पति हमको पवित्र नहीं बनने देते और वो हमेशा ही खिटखिट करते हैं, विघ्न डालते हैं। तो भी वो माताएं इतनी पक्की होती हैं, जो शास्त्रों में गाए ना नारियों ने नर को तारा, तो आखिर वो अपने पतियों का उद्धार करके ही छोड़ती है। माताओं की ये खूबी होती है, वो सुने नहीं सुने, उनको धीरे धीरे ज्ञान सुना सुना के भू 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 करके अपने अंदर परिवर्तन लाके उनको जरूर ब्राह्मण बना के छोड़ती है। पर हमारे जो भाई होते हैं उनमें ये वृत्ति होती है, इसको ज्ञान में चलना है तो चले, नहीं चलना है तो नहीं चले, मैं तो चलता हूँ, समझा? ये जो भावना है ना, ये भावना आपको विघ्न डालती है। आप अगर उस आत्मा के लिए कल्याण का भाव रखते हैं, उसके लिए आप उन्नति का भाव रखते हैं, तो उसमें धीरे धीरे जरूर परिवर्तन आ जाएगा। आप उस आत्मा के लिए नफरत नहीं करो, परंतु रहम की दृष्टि रखो, प्यार की दृष्टि रखो। और शास्त्रों में ये भी तो है ना कि शुभ नखाएं जो थी वो विघ्न डालती थी, तो शुभ नखाएं भी कोई कोई होती है विघ्न डालने वाली, परंतु विघ्न नहीं डालेंगे तो हम पक्के कैसे बनेंगे? तो ये भी एक परीक्षा है, इस परीक्षा में पास होना।
अभी 3 वर्षों से मैं ज्ञान में हूँ, पहले के सारे व्यसन टेंशन डिप्रेशन लौकिक चिंताएं सारी दूर हो गई, लेकिन अभी अभी श्रीमत पर पूरा नहीं चल पाने से, अमृत वेला मिस होने से या मनसा वाचा कोई विकर्म हो जाने पर बहुत ही टेंशन और पश्चाताप होता है, तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए।
देखो बाबा कहता है कि श्रीमत पर चलना है, नियम मर्यादा में चलना है, दिनचर्या एक्यूरेट रखनी है। अगर कभी नहीं चल पाते हैं, कोई दिन मिस होता है, तो बाबा कहता है अटेंशन रखो। पर टेंशन नहीं करना है ना, चलो भाई हो गया। आत्मा बाबा कहते ना, जन्मते ही तो कोई राजा नहीं बन जाती, पुरुषार्थ कर करके योग्य बनती। इसलिए टेंशन नहीं करना है, पर महसूस करना है कि आज मिस हो गया, पर आगे से ऐसा अलबेलापन हम नहीं रखेंगे। टेंशन में आने से तो कोई फायदा ही नहीं, बाकी घड़ी घड़ी मिस हमें नहीं करना चाहिए। घड़ी घड़ी मिस करने का मतलब तो ये हुआ कि हमारे में आलस है, अलबेलापन है, हमने पूरा समय को बाबा को नहीं पहचाना है, तभी हम ये अलबेलापन कर रहे हैं।
लौकिक वाले सभी अज्ञानी हैं, तो उसके साथ कैसे रहना चाहिए? लौकिक वाले सभी, घर वाले सभी अज्ञानी हैं, तो उसके साथ बैलेंस में कैसे रहना चाहिए? क्योंकि वो ज्ञान में चलता हूँ तो विघ्न डालते हैं, तो मुझे उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए?
आप लोगों ने माया को चैलेंज दिया है कि तुम आओ और हम तुम्हारे को जीते, फिर माया आती है चिल्लाते क्यों? चैलेंज खुद देते हो, युद्ध के मैदान पर खुद आए हो, और फिर युद्ध के मैदान पर आने के बाद कमांडर को बोलेंगे, कमांडर दुश्मन को बोलो मेरे पर गोली नहीं चलावे, मेरे को हाथ नहीं लगावे, ये भी कोई बात होती है? विघन तो आना ही है, विघन नहीं आएंगे तो आप विघन विनाशक कैसे बनेंगे? आज आप देखो एक दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है टीवी रिपेयर, तो उसके पास कौन से टीवी आते हैं? खराब टीवी आएंगे, अच्छे आएंगे? फिर वो बोले क्या सारा दिन मेरे पास खराब ही टीवी आते? अरे तूने बोर्ड ही कौन सा लगाया है? तो तुम लोगों ने बोर्ड ही लगाया है विघन विनाशक, तो विघन तो आना ही है, वो आएंगे तभी तो विनाश करेंगे, तभी तो आपकी पूजा होगी, नहीं तो कैसा होगी ये बताओ।
अभी एक ज्ञान का प्रश्न आया है कि क्लास में बताया गया कि किसी बिना किसी बीज के कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होती है, तो कृपया बताएं सुख शांति व मन मना भव की स्थिति को निरंतर बनाए रखने के लिए किस बीज का इस्तेमाल करें, जिससे वह उत्तरोत्तर वट वृक्ष होकर के हमारे जीवन को फलता फूलता रखे।
रोज मुरली में बाबा क्या बताता है, वही तो बताता है। रोज की मुरली में बाबा कौन सा मार्गदर्शन देते? हमारा बाबा से निरंतर योग लगा रहे और हम निरंतर सुख आनंद प्रेम की अनुभूति में रहे, उसी के लिए तो बाबा ज्ञान देता है। कोई एक बीज, कोई एक थॉट की बात नहीं है ना, बाबा तो अनेकानेक श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ स्मृतियां हमें देते। अभी कल परसों ही बाबा की मुरली चली कि मैं कितनी स्मृतियां तुमको याद दिलाता, उस मुरली में ही देखिए बाबा ने कितनी 8-10 स्मृति की बात कही। तो ये सारे संकल्प जो है वो सत्य ज्ञान के हैं, और हर सत्य बीज है जो हमें निरंतर योगी बनाता है और सुख की अनुभूति कराता है।
और एक प्रश्न दीदी आया है, अज्ञानियों का हाथ का तो हमने बाहर का खाना बंद कर दिया है, लेकिन कभी कभी बर्थ डे पर या विशेष अवसरों पर ज्ञानी बीके भाई बहनों के पास जाकर के भोजन करना पड़ता है जो कि धारणा मूर्त नहीं है, तो जब जब भोजन करता हूँ तो मेरी पवित्रता डिस्टर्ब होती है, तो क्या करें?
तो आप इसको ज्ञानी कैसे कह सकते? वो कैसा ज्ञानी हुआ जिसका भोजन खाने से अवस्था डिस्टर्ब होती है, वो भोजन बनाने वाला भी कैसा ज्ञानी और खाने वाला भी कैसा ज्ञानी, इतना कमजोर है क्या जो भोजन करने से अवस्था हिल गई, पवित्रता पर ही असर आ गई, तो हम क्यों खाते हैं? हाँ, वो भी नहीं रहते हैं तो हमें क्यों खाना चाहिए? बर्थडे हो या विजय डे हो, कोई भी डे हो, हम भगवान की याद में खाते हैं, वही हमारा सेलिब्रेशन है, वही हमारा हैप्पी बर्थडे है, हमें और किसी के यहाँ जाके खाने की जरूरत ही नहीं है ना।
अच्छा दीदी, एक प्रश्न ये आया है कि हमारे धन को हमें सफल करना है तो हमारा जो मासिक हमारा जो आता है धन आता है पगार, तो उसमें से हमें कितना हिस्सा बाबा के यज्ञ में डालना चाहिए? जो भी आता है तो उसमें से कितना हिस्सा मेरा बाबा के यज्ञ में जाना चाहिए?
आप लोगों को अपनी प्रवृत्ति भी संभालनी है, समाज में भी रहना है, अपनी तबीयतें भी संभालनी है, भविष्य भी देखना है, ये सब कुछ देखते हुए समझो किसी को दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे हैं, दो बच्चों के ऊपर हम कितना खर्चा करते हैं हर मास। शिव को तीसरा बालक बना लो तो जितना उनके ऊपर करते हो उतना इस बालक के ऊपर करो, बात पूरी हो जाएगी, इजी हो जाएगी।
मेरी युगल ज्ञान में है, रोज मुरली क्लास करती है, योग भी करती है, मगर मर्यादाओं में नहीं चलती है, भोजन में प्याज लहसुन चुपके से डाल देती है, तो अभी उसी समय मुझे उसके हाथ का भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करूं?
ज्ञान में चलना किसको कहा जाता है? ज्ञान में चलना किसको कहा जाता है?
क्लास में जाना।
सिर्फ मुरली सुने, योग किया और आचरण में कुछ भी नहीं, तो उसको थोड़ी ज्ञान में चलना कैसे? ज्ञान में चलने का प्रैक्टिकल प्रमाण है जीवन नियम मर्यादा अनुसार शुद्ध श्रेष्ठ दिव्य बनाना। इसलिए वो अपने भोजन में, चलो आप घर में रहते हैं और आपको रोज खाने की बात है, पवित्र रहती है, आप उसके हाथ का भोजन खा सकते हैं। अब वो नई ज्ञान में चलती है और उसको लहसुन प्याज खाना है, वो अपना अलग से डालती है, तो वो जाने, पर चलो इतना तो सहयोग है ना कि भगवान की सबसे बड़ी जो आज्ञा है पवित्रता की, उसका वो पालन कर रही है और वो भोजन बना के आपको देती है, तो आप स्वीकार करिए बाबा की याद में। और वरना आप में इतना रोज भोजन बनाने की शक्ति हो, व्यवस्था हो, टाइम हो, ये भी बात तो सोचनी है ना। मुख्य है पवित्र रहकर भोजन बनाती है और आपके लिए तो बिना लहसुन प्याज का बना रही है ना, तो उन वो बहुत अच्छी बात है, वो आप स्वीकार करिए, उनकी बात वो जाने।
एक प्रश्न आया है कि मैं 25 साल से गणेश चतुर्थी के दिनों में गणेश जी की मूर्ति लाकर के घर में पूजा आदि हम सभी करते थे। इस साल जब मैं अभी ज्ञान में चलता हूँ तो मैंने इस साल घर वालों को कहा कि अभी हम मूर्ति लाकर के नहीं रखेंगे, लेकिन घर में जो छोटी मूर्ति है उसकी ही पूजा करेंगे। तो मैं यहाँ बच्ची में आया और समाचार मिला कि मेरे बेटे की जो नौकरी थी वो चली गई, तो वहाँ से सब अभी ताना मारते हैं दीदी कि आपने जो मना किया ना पूजा के लिए, इसीलिए यह सब कुछ हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो नौकरी चली गई, लेकिन उनसे भी अच्छी नौकरी बेटे को मिलेंगी, लेकिन घर वालों को अभी क्या समझाए, मैं जाकर के क्या समझाऊं?
आपका जो निश्चय है और फीलिंग है वो बहुत अच्छी है और ये सत्य है। दुनिया में लाखों हैं जो कोई गणेश बिठाकर पूजा नहीं भी करते हैं, क्या उनकी नौकरियां नहीं जाती है? उनकी नौकरी मिलती है क्या? ये परिस्थिति हर किसी के जीवन में आती है। लोगों की ये अंधश्रद्धा है कि देवताओं की भक्ति छोड़ी देवताएं कुपायमान हो जाते हैं तो ये नुकसान होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। बाबा कहते ना, भगवान के नाम पर संन्यास लेने वालों को भी कितनी बीमारियां हो जाती, वो भी पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उनको भी क्या क्या बीमारियां लग जाती है। तो इन चीजों से भगवान का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो हमारे अपने कर्मों का हिसाब किताब है। हमारे कर्म सत्य और श्रेष्ठ हो रहे हैं तो हमें निश्चय होना चाहिए कि हर हाल में कल्याण है और आगे और अच्छी हमारी उन्नति होनी है।
परंतु गीता बहन, घर वालों को अगर विश्वास है, उनको अगर गणेश रखना है तो भले जाके रखें, उसमें क्या?
वो खुद नहीं रखते हैं, ये रखते थे और अब नहीं रखते, उसका उनको प्रॉब्लम है। लोगों को ऐसा है कि वो पूजा करता था अब नहीं करता है, इसलिए ऐसा हुआ। उनको रखना है वो भले रखे। हम लोग जब ज्ञान में आए तो नेचुरली पिताजी ही पहले ज्ञान में आए और बहुत पक्के निश्चय बुद्धि बन गए, तो पूरा भक्ति का जो सामान था वो समेट के रख लिया। तो माताजी ने बोला कि ये किसी को दे दो तो वो लोग पूजा करते रहेंगे। पिताजी ने तुरंत जवाब दिया कि हमें किसी को भगत थोड़ी बनाना है, हमें तो सबको ज्ञानी बनाना है। तो वो नदी में डाल के आए पर किसी को दिया भी नहीं। और थोड़े दिनों के बाद इतना सीवियर टाइफोड हो गया तो सब कहने लगे कि देखा भक्ति छोड़ी इसलिए हुआ। पर जिनको निश्चय है वो जरा भी हिलते नहीं है और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है।
दीदी, एक प्रश्न आया है कि ज्ञान में आने के बाद जब सगे संबंधियों के प्रसंगों में हम नहीं जाते हैं तो वो भी नाराज होते हैं और टोंट मारते रहते हैं, और जब हम लौकिक ये सारी बातें निभाते हैं तो सेंटर पर कोई हम सेवा नहीं कर सकते हैं, तो हमारी दीदी हमें बोलती है या टोंट मारती है, तो क्या करें? दोनों में बैलेंस क्या करें? अच्छा दीदी, ऐसे है, जब हम लौकिक में प्रसंगों में जाते हैं, नहीं जाते तो लौकिक वाले बोलते हैं, और जब वहां जाते हैं तो सेंटर पर कई बार हम समय नहीं दे सकते सेवा के लिए, तो दीदिया हमें बोलती है, तो दोनों का बैलेंस हम कैसे रखें?
टीचर डांटती है कि यहाँ क्यों जाएंगे?
टीचर को अपने सरकमटेंस बताओ तो नहीं डांटेंगे फिर? वो समझती होगी ऐसा ही नहीं आता है, ऐसा होता है, उसको बताओ हमारे क्या सरकमटेंस, थोड़ा उधर टांग दो, थोड़ा उधर टांग दो, बैलेंस करके चलो दोनों टांगों का, और क्या ज्यादा क्या कर सकते हैं?
आपका विवेक समझ रहा है ना, हम रॉन्ग नहीं कर रहे, जहाँ जरूरी है लौकिक में टाइम दे रहे हैं और बाकी जितना हो सकता है हम बाबा को भी टाइम दे रहे हैं, तो फिर लौकिक वाले डांटे या कोई टीचर डांटे आप उसको माइंड नहीं करिए, आप अपने बैलेंस में चलते रहे।
क्या हम ड्रामा को चेंज कर सकते हैं? अगर नहीं तो पुरुषार्थ के लिए क्या माने, क्योंकि ड्रामा में जैसा होगा उस प्रकार पुरुषार्थ चलता रहेगा।
आज ही बाबा ने मुरली में बोला ना, जो नसीब में होगा माना ही ड्रामा, जो नसीब में होगा ऐसा करके बैठ नहीं जाना है, पुरुषार्थ पूरा करना है, पर फेल होने के बाद बोलते हैं कि हमारे नसीब में नहीं, पहले तो पुरुषार्थ किया जाता है, इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, तो क्या जवाब है? पुरुषार्थ बड़ा है ना, तो इसीलिए पुरुषार्थ तो हमको करना है। ये जो पुरुषार्थ हीन होते हैं ना, वो ड्रामा को पकड़ के बैठते हैं। वास्तव में ड्रामा ऐसा घूमता है, परंतु क्या करते हैं, अपनी मत पर ड्रामा को ऐसा घुमाते हैं, अगर आप ऐसा ड्रामा को घुमाएंगे तो माया का गला काटती है, जब ड्रामा को हम उल्टा घुमाते हैं तो मेरा गला काटती है। तो इसीलिए कभी भी उसको उल्टा नहीं घुमाना, सुलटा घुमाना, स्वदर्शन चक्र, उल्टा स्वदर्शन चक्र नहीं घुमाना कभी। तो पुरुषार्थ तो करना है, आप बैठ जाओ खटिया पर, बोलो मेरे अगर नसीब में होगा तो मेरे को पानी मिलेगा, आपको पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, घुट तो छोड़ दो, पुरुषार्थ तो करना ही है। इसीलिए पहले पुरुषार्थ पीछे ड्रामा।
और देखो ड्रामा में क्या हमारा निश्चित है हमें पता नहीं है, तो इंसान का फर्ज है अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना, कर्म में पुरुषार्थ, कर्म के रिजल्ट पर ड्रामा।
अच्छा, अभी मैं योग करने जब बैठता हूँ तो मेरी एक आदत बन गई है आंखें बंद करके योग करना, आंखें खुली रख करके मैं योग नहीं कर सकता हूँ, तो यह सही है?
नहीं कर सकता तो नहीं करे, बंद करके करे, सोवे नहीं फिर, ऐसा नहीं है बंद करते करते बंद ही हो जावे।
बंद करके भी योग हो रहा है वो देखिए पहले, है ना? बंद करके बैठेंगे तो और ही व्यक्ति को अनेक विचार आते हैं, आंखें खुली हैं तो हमें एहसास होता है कि हम इसी दुनिया में हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण आंख बंद करना और खोलना नहीं है, महत्वपूर्ण है योग लगता है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी भगवान कहते हैं कि आंखें खुली रखते हुए भी तुम मुझे याद कर सकते हो, आंख बंद करने की अननेचुरल मेथड को अपनाने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे अपने आप को चेंज करिए।
जब बाबा की याद में बैठता हूँ, जैसे ही योग में बैठता हूँ तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है, और जैसे ही याद से मैं उठता हूँ योग से तो नींद चली जाती है, तो क्या करूँ जो याद में नींद ना आए?
देखो योग में बैठते हैं नींद आती है, इसका अर्थ ये है कि आपका मन शून्य हो जाता है, जो हमारा बाबा से रूरिहान चलना चाहिए, ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए, जो बाबा से हमें सुख मिला वो अनुभूति होनी चाहिए, उसमें आप नहीं रहते हैं और शून्य बन के बैठते हैं तो नेचुरली मन निंद्रा में चला जाता है। इसलिए अंदर अंदर हमें चिंतन करना, ज्ञान का मनन चिंतन करे, बाबा से बातचीत करे, कितनी बाबा से प्राप्तियां है उस अनुभूति में रहे, शून्य नहीं हो जाए। और उसके लिए आप थोड़ी मुरली पढ़िए, फिर बैठ जाइए, फिर रिवाइज करिए, बाबा से बात करिए, फिर वापस लगता है नींद आ रही है, फिर चार लाइन पढ़िए, फिर बाबा के साथ उस पर बातचीत करिए, तो वो खत्म हो जाएगा।
दीदी, कर्म से वृत्ति परिवर्तन होती है या वृत्ति से कर्म परिवर्तन होते हैं? कर्म से वृत्ति परिवर्तन होती है या वृत्ति से कर्म परिवर्तन होता है?
दोनों भी ओतप्रोत है, जैसा वृत्ति में होगा वैसा वाणी में होगा, जैसा वृत्ति में होगा वैसा दृष्टि में होगा, जैसा दृष्टि में होगा वैसा सृष्टि में होगा। इसीलिए बाबा ने आके सबसे पहले हमारी वृत्ति को परिवर्तन किया कि तुम पहले ये जो दैहिक वृत्ति है तुम्हारी, इससे हटा करके तुम आत्मिक वृत्ति रखो, भाई भाई की वृत्ति रखो, रूहानी वृत्ति रखो। तो बाबा ने वृत्ति परिवर्तन से हमारी सृष्टि को परिवर्तन कर डाला, और जितनी जितनी हमारी वृत्ति परिवर्तित होती जाती है उतने उतने हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं, कर्म श्रेष्ठ बनते हैं उसके जोर से हमारी वृत्ति भी ऊंची बनती जाती है, एक दो के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है।
दीदी, एक प्रश्न और आया है, कि मेरी युगल कहती है, वो ज्ञान में नहीं चलती है, कि अगर आपको ब्रह्मा कुमार बनना था तो मेरे से शादी क्यों की?
भूल हो गई।
और जब जब योग में बैठता हूँ घर में तो वो बहुत ही शोर करती है और जानबूझकर हल्ला करती है, और 8 साल से लगातार मैं उसको सकास देता हूँ, लेकिन थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो अभी मैं क्या करूँ?
कुछ भी नहीं कर भाई, तू कुछ नहीं कर, उसको बाबा की याद में रह, ठीक हो जाएगा। वो अपने हिसाब से ठीक बोलती है, तेरे को अगर योगी बनना था तो मेरे से शादी क्यों किया? अभी ड्रामा में था इसलिए कर लिया, अभी और क्या कर सकते तुम? समझाने की कोशिश करो, योग लगाओ, अपने में परिवर्तन लाओ, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। आप उसके लिए हमेशा शुभ सोचो।
युगल ज्ञान में नहीं है और मेरे पास जमीन है, मुझे उसको सेवा में लगाना है।
कौन युगल?
युगल ज्ञान में नहीं है, मेरे पास जमीन है, उसको सेवा में लगाना है, तो अभी मैं कैसे उसको सेवा के अंदर समर्पित करूं? उसको कैसे मैं समझाऊं युगल को?
पहले युगल को ज्ञान में ले आओ, फिर पीछे जमीन को समर्पित करना। उसको समझाओ पहले, कम से कम आपकी सहयोगी तो बन जावे, योगी नहीं बने तो सहयोगी बनेगी तो आपको छुट्टी देगी, भले जाके सेवा में लगाओ। इसीलिए पहले उसकी सेवा करने की जरूरत है, पीछे फिर बाहर वालों की सेवा की बात।
पशु पक्षी आदि परम धाम में बाबा के साथ जाएंगे या नहीं, उसकी आत्मा? गीता दीदी वो स्पष्ट करो। पशु और पक्षी की आत्माएं अंत में सभी साथ में ऊपर परम धाम, पशु पक्षी जानवर आदि की आत्माएं सभी परम धाम जाएंगी या नहीं?
देखो अभी भी पशु पंछियों की चिंता है, खुद की चिंता नहीं है। आप देखिए कितना अभी भी हम दूसरों के में ही बुद्धि है। अब समय है हमारी अपनी वापसी यात्रा हमें कैसे करनी है, वो तैयारी करनी है। वो पशु पंछी की आत्माओं के बारे में दीदी ने पहले भी कहा, जब बाबा बताएंगे हम आपको बता देंगे। पर ये इंसान का एक नेचर बन गया ज्ञान काल में कि जब हमारी बात आती है तो हम दूसरों की सोचने लगते। जब मुझे कोई परिवर्तन करने के लिए कहेगा तो मैं दूसरे की बात करूंगी कि वो भी तो 4 भूल करता है। ये एक नेचर बन गई है हमारी। जिन इन बातों का देवता बनने से कोई रिलेशन नहीं है। बाबा वही बात हमें बताते हैं जो मनुष्य से देवता बनने के लिए जरूरी है। भगवान हमारा उद्धार सुधार कर रहा है तो उनका भी होगा, चिंता मत करिए।
दीदी एक प्रश्न ये आया है, जैसे युगल ज्ञान में नहीं है और उसके हाथ का मैं खाता भी हूँ, लेकिन लहसुन प्याज वो भोजन में डाल देती है, तो बाबा को भोग लगाए या नहीं लगाए?
नहीं लगा सकते हैं। अगर वो ज्ञान में नहीं चलती है, बाबा को याद नहीं करती है, तो भोग नहीं लगाना चाहिए। आप जब ये भोजन खाते हैं उस समय बाबा की याद में भोजन खाओ। क्या डालती है क्या नहीं डालती है क्या मन, उसको खुद को भी भाई को मालूम नहीं पड़ता मैं क्या खा रहा हूँ। सातवीं भूमिका है उसकी।
दीदी योग में व्यर्थ बहुत आता है, 5 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, कभी कभी बहुत गंदे सपना हैरान करते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है इविल सोल भी मुझे हैरान करती है, तो अभी उस स्थिति से परे होने के लिए मैं क्या करूं?
जो भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्पों को दूर करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत युक्तियां बताई। एक बार शुरू शुरू में जब बाबा अव्यक्त हुए तो हम लोग बाबा सब बच्चों से पर्सनल मिलते थे एक एक, तो उस समय बाबा की व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की बहुत मुरलियां चल रही थी। तो हमने बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा कभी ऐसा फालतू संकल्प आ जाता है तो क्या किया जाए। तो बाबा ने कहा, बाबा जो तुम बच्चों को युक्तियां बताते हैं उन युक्तियों को तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हारे को व्यर्थ से मुक्ति नहीं मिलती। अगर तुम्हें व्यर्थ से मुक्ति चाहिए तो बाबा की युक्तियों को यूज करना सीख जाओ तो आप ही तुम्हारे को मुक्ति मिल जाएगी। और जितना जितना व्यर्थ चलता है तो उस आधार पर कहते हैं ना, जो मन में चिंतन होता है वैसे संकल्प आते हैं, सपन पढ़ते हैं। इसीलिए मन को व्यर्थ में चलाएंगे तो सपने भी व्यर्थ आएंगे। तो सोने के समय खास विशेष, हम तो ये प्रैक्टिस करते हैं, सोने के पहले बाबा की याद में 5 मिनट भी बैठे और बाबा हम आपकी गोदी में आके सो रहे हैं, बाबा की याद में बाबा की गोदी में सोते हैं तो हमें तो कोई सपने नहीं आते, कोई सपने आपको भी नहीं आएंगे। उसके लिए समर संकल्प पैदा करने की अपने में शक्ति रखो, उसके लिए थोड़ा मनन चिंतन करो, अध्ययन करो, तो धीरे धीरे आपको पॉजिटिव संकल्प आना चालू हो जाए।
अभी कोई भी भाई प्रश्न अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं। अच्छा, हर एक जोन के अंदर सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र बनाया गया है, तो मुझे बेहद की अभी कोई तो अभी सेवा करने के लिए क्राइटेरिया है क्या, बेहद की सेवा हम कर सकते हैं? माना अपने ही सेंटर पर सेवा करें या बेहद की सेवा में हम जा सकते हैं, क्योंकि मुझे बेहद की सेवा में ज्यादा रुचि है, हर सेंटर पर मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो क्या करें?
बाबा तो बोलते हैं सारे विश्व में सेवा करो, मनसा सेवा करेंगे कैसे करेंगे, सारे विश्व के लिए करेंगे ना, किसी हद तक तो नहीं करेंगे, बाकी जो नियम है जो कायदे है उस अनुसार तो चलना ही पड़ता है, सब तरफ कहाँ घूमता रहेगा बेचारा।
दीदी मेरा एक तो बाबा कहता है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अपन निमित्त है, बाबा कहता है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, ये बाबा के ही ज्ञान का बहुत अच्छा स्लोगन है, थिंक ग्लोबली, पूरे विश्व की सेवा का हम विचार करें, पर शुरुआत तो हम जहां है वहां से ही करनी होगी। तो आप जिस भी सेंटर से कनेक्टेड है वहां भी सेवा करिए, और कभी कोई बेहद की सेवा में जाते हैं तो भले जाइए, पर ये नहीं कि हम सब जगह सेवा के नाम पर घूमते रहे और कहीं के भी ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पहली रिलेशन कनेक्शन निमित्त सेंटर से होना चाहिए, बाकी फिर कभी टाइम है शक्ति है तो जहाँ जो सेवा करना चाहे वो आप करिए, पर कईयों को फिर आदत पड़ जाती है जहाँ तहाँ जाना, हर किसी के प्रोग्राम में हाजिर हो जाना, लाभ लेना, ऐसा नहीं है। फिर क्या है, भक्ति की तरह आदत पड़ जाती है कि हर मंदिर में जाओ बाकी करो कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अच्छा, अभी मैं कारपेंट्री का काम करता हूँ और बाबा का ट्रांसलेट आदि बनाता हूँ कारपेंट्री का, तो कई बार दीदी मुझे लगता है भट्टी यहाँ से की तो मुझे सेंटर पर मैं सेवा करता हूँ यह तो मुझे पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरी जो स्थिति है वो बहुत ही गरीब है, तो फिर एक तरफ से होता है बाबा के घर के पैसे नहीं लेने चाहिए और स्थिति भी गरीब है, तो मुझे मार्ग बताइए मैं क्या करूँ।
अब ये लेना नहीं चाहिए ऐसा समझते हैं, परंतु परिस्थिति गरीब है तो उसके लिए पेट शरीर निर्वाह के लिए तो लेना ही पड़ेगा, तो ज्यादा उसमें ज्यादा नफा नहीं रखो, परंतु जितनी मेहनत करते उतना तो जरूर लेना चाहिए, हर्जा नहीं है लेना।
नहीं भाई,
नहीं तो कैसा चलेगा।
जितना जरूरी है अवश्य ले, चलो आप दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट्स लेकर काम करते हैं तो सेंटर से आप कम ले, पर लेना तो पड़ेगा क्योंकि वही हमारे जीवन निर्वाह का साधन है, तो इसमें आप संकोच नहीं करें, आप ले सकते हैं।
और एक प्रश्न, जब हम किसी सेवा केंद्र पर एक दो दिन के लिए जाते हैं तो वापिस जाने के समय जब निमित्त दीदी के हाथों में यज्ञ सहयोग देते हैं तो देह भान आता है, और भंडारी में अगर डालने का संकल्प करते हैं तो यह सोच संकल्प चलता है कि दीदी क्या सोचेंगी, खाया पिया और यह चला गया, कुछ डालना नहीं बाबा के यज्ञ में, तो उसी समय हमें कैसे सहयोग देना चाहिए।
जैसा भी इच्छा हो वैसा कर सकते, ये कोई बांधा हुआ नहीं है, भंडारी में भी डाल सकते, हाथ में जैसा देना, जैसा भी करो वैसा, आपके ऊपर है।
देखो भंडारी भी बहने ही खुलती है, आप लिफाफे में डाल के अपना नाम वगैरह लिख के भंडारी में डालते हैं या बहनों के हाथ में देते हैं, बाबा की याद से बाबा के लिए देते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, आप जैसा चाहें दे सकते हैं।
अभी लास्ट दो तीन प्रश्न, श्री कृष्ण का जन्म संगम,
कोई वायर जलने की बात आ रही है,
श्री कृष्ण का जन्म संगम युग में होगा या सतयुग में होगा, श्री कृष्ण का जन्म संगम युग पर ही होगा या सतयुग में होगा।
बाबा ने तो बताया कि वो सतयुग का पहला प्रिंस है तो सतयुग में ही होना चाहिए, उसको सतयुग ही
कहेंगे। अच्छा, और एक प्रश्न, सारे दिन की दिनचर्या में
मुरली में बाबा तो कहते हैं ना कि संपूर्ण सतयुग लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तब से माना जाएगा, पर शुरुआत दैवी जन्म की तो कृष्ण से ही होगी ना, इसलिए वो जन्म भी पवित्र दिव्य ही है जो सतयुगी ही माना जाएगा,
क्योंकि वो कल्पवृक्ष का पहला पत्ता है, पहला पत्ता है तो पहले ही आएगा ना।
और ऐसा नहीं होता है, ये साइकिल है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा खत्म हो जाए कलयुग फिर सतयुग की पहली आत्मा आवे, ऐसा नहीं होता है, कलयुग के अंत में से ही सतयुग शुरू हो जाएगा, तो ये साइकिल का वो पॉइंट आता है जहां दोनों युग का एंड होता है।
दीदी एक प्रश्न आया है, क्या बाहर का जो मशीन का बनाया हुआ नमकीन व आइसक्रीम व कोल्ड ड्रिंक खा सकते हैं, बाबा की याद से याद में वाइब्रेशन दे करके खा सकते हैं या नहीं? मशीन का बना हुआ आइसक्रीम है, नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक्स है,
आपका मन मानता होगे तो खाइए, नहीं मन माने तो नहीं खाओ, आपके ऊपर है।
सही बात है,
कैसा कर सकते?
देखो आजकल दुनिया वाले भी नहीं खाते हैं, इतनी मिलावट बनावट होती है आप सोच नहीं सकते, वो किस प्रकार का तेल यूज करते होंगे, क्या क्या मिक्स करते होंगे, आपको क्या पता है। चलो मशीन मेड है पर मटेरियल्स जो यूज करते हैं वो किस प्रकार का है। और दूसरा कि बाबा कहता है कि हमें, हम अपना रोज का खाना खाते हैं फिर ये इच्छाएं हमें क्यों होती, तो ये भी एक प्रकार का स्वाद ही है, आप जितना बाबा की याद में घर में बना के खा सकते हैं दी बेस्ट है, कोई लाचारी हालत में भूख मरने की बात है तो अलग बात है कि आप कोई मशीन मेड चीज लेते हैं और योग करके खाते हैं, और इच्छा से खाना अलग बात है। आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये तो एक्सेस ही है ना, वो कोई आवश्यक खाना नहीं है।
अभी लास्ट क्वेश्चन। मैं 3 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, मेरी युगल ज्ञान में नहीं चलती है, वो किसी
युगल ज्ञान में नहीं चलती।
दीदी ने पूछ रही, दीदी सबकी युगल ज्ञान में नहीं चल रही है, किसकी किसकी युगल ज्ञान में नहीं चल रही है, हाथ खड़ा करे थोड़ा, दीदी को बताए।
ये सिंगल अजहर कुमार आए, इनकी युगल मेजोरिटी की नहीं चल रही,
तो वो मेरी युगल अन्य मिशन में जाती है, ताकि उस मिशन के अंदर बहुत ही बुरा होता रहता है, और सारी मेरी युगल के लिए अच्छी अच्छी बातें लोग नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे ये सब सुनने को मिलता है। तो जब भी मैं योग में बैठता हूँ तो वो सारी बातें मेरे सामने आती है, तो क्या करूँ, योग कैसे लगाऊँ? दूसरे मिशन में जाती है और वहाँ के सभी लोग गलत गलत बातें उसकी युगल के लिए बोलते हैं, चारित्र के लिए, तो मुझे बहुत संकल्प चलते हैं, मैं उसको समझाता हूँ लेकिन नहीं समझती है, बंद नहीं करती है, तो उसी समय मैं क्या करूँ?
नहीं देखो, आप अपने घर के मालिक हैं, आप अपनी युगल ज्ञान में नहीं चलती है, पर अच्छी बात आप बता सकते हैं कि आप पॉजिटिवली जानने का प्रयास करिए कि भी वो संस्था क्या है, वहाँ क्या होता है, कौन हेड है, किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, आप जाके क्या करते हैं, ये सब कुछ पहले आप जानिए पॉजिटिवली, किसी की सुनी सुनाई पर हम क्यों मान ले, उनसे जानिए और फिर आप अपनी रीति से फिर वहाँ जांच करिए, फिर बहुत ऐसा कुछ हो तो बताइए, बाकी आजकल हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लोग बोलते ही रहते।
बाबा को घर में भोग कैसे लगाए उसकी विधि थोड़ी स्पष्ट करें, घर में बाबा को भोग अकेला हूँ तो कैसे लगाऊं उसकी विधि स्पष्ट करें।
बाबा को भोग लगाने के लिए तो आप दूध भी रख सकते हैं, केला भी, जो भी फ्रूट हो वो फ्रूट भी रख सकते, लगा सकते, और कुछ नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं है, इतना तो दूध और फ्रूट तो जरूर लगा सकते हैं बाबा को।
देखो प्रश्न तो बहुत आ रहे हैं, पर समय की भी अपनी मर्यादा है, बाबा ने हम बच्चों को मुरली एक ऐसा साधन दिया है जिसमें हर बात के जवाब आ ही जाते हैं, थोड़ा सा हमें उस पर गौर करना चाहिए, और जब हमारा अपना लक्ष्य मजबूत है तो कोई भी बातें हमें हिला नहीं सकती और हम निश्चिंत भी रह सकते
हैं। अब ये समय जब माताएं आई थी, इस समय माताओं का ग्रुप आया था, तो कितनी थी माताएं? गीता 10,000 माताएं थी, और मैं समझती हूँ उसमें से बांदेली माताएं कौन कौन है जिनको बंदा ने हाथ ऊपर कराया, कोई 8-10 माताएं मुश्किल निकली, परंतु यहाँ भाइयों की संख्या बहुत ज्यादा निकली जो युगल उनको सहयोग नहीं देती, ऐसा क्यों, क्या बात है, संख्या कम है, 2,500 है ना ये, और ऐसा क्यों है? इसीलिए आप शुभ चिंतक बन के उनका भी कल्याण सोचिए। मैंने कहा ना माताओं में ये खूबी होती है, उनके पीछे लग जाएंगे, धीरे 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 उन लोगों को बाबा का परिचय देते रहेंगे, उनके अंदर परिवर्तन लाएंगे, तो आप भी उनके भी कल्याणकारी बनो ना, ये भी तो सेवा है। सारे विश्व की सेवा करते हैं तो विश्व के अंदर ही है ना वो आत्माएं भी, तो उनका भी कल्याण करने का अब मार्ग देखो सोच।
दीदी एक प्रश्न है कि ये भाई गीता पाठशाला में क्लास करते हैं और उस गीता पाठशाला के टीचर जो हैं उनके साथ पैसे की लेन देन हुई है। वो खुद यज्ञ सेवा अलग करते हैं पर उस टीचर को ने भी कोई पैसे लिए हुए हैं और 3-4 साल हो गए दे देंगे ऐसे कहते हैं तो अभी तक दे नहीं रहे हैं, ना वो इंचार्ज को बता पाते हैं और ना वो भाई देने की कोई बात कर रहा है।
आप देखो हम लोगों के जो ईश्वरीय नियम लिखे हुए हैं क्लास में आने के, उसमें ये भी है कि यहाँ कोई भी सेंटर पर कोई भी ज्ञानी भाई बहन आपस में पैसे की लेन देन नहीं करें। तो जब अपना नियम है कि पैसे की लेन देन नहीं करनी है फिर भी आप करते हैं तो इससे संबंध विच्छेद होते हैं, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जो नियम है वो पढ़ करके उस अनुसार चलने की कोशिश करो। और हम लोग तो हमेशा क्लास में भी बताते रहते हैं कि ऐसा पैसे की लेन देन आपस में नहीं करना। फिर धीरे धीरे देखा जाता है पैसा लेने वाला और पैसा देने वाला दोनों भी क्लास में आना बंद कर देते हैं क्योंकि वो दे नहीं सकता इसलिए उसको शर्म आती है, वो नहीं देता है इसीलिए लेने वाले को गुस्सा आता है तो इसीलिए उसका मुंह ही नहीं देखना है मेरे को, वो भी नहीं आता है वो भी नहीं आता। तो इसीलिए ये कभी भी व्यवहार आपस में नहीं करना।
देखो दुनिया में भी ये सामान्य विवेक सिखाते हैं कि बहुत सोच समझ कर पैसे की लेन देन करना चाहिए। पैसा ऐसी चीज है वो संबंध बिगाड़ देता है, इसलिए देना ही नहीं है और देते हैं तो सोच लीजिए पहले से कि वापस न मिले तो मुझे अपनी अवस्था या जीवन कैसे चलाना है। इसलिए बहुत सोच समझ कर करिए और देने के बाद यही समझ लीजिए कि न भी मिले तो न संबंध बिगड़े न मन बिगड़े, इसलिए पहले से समझदार ज्ञानवान आत्मा बनकर हमें चलना चाहिए।
जैसा ये है ना पैसे की लेन देन वैसा ही नए संबंध यहाँ कोई भी जोड़ने की कोशिश नहीं करना। ऐसा भी करते हैं तुम्हारी लड़की मेरा लड़का तुम भी ज्ञानी हम भी ज्ञानी उनकी शादी करा देते हैं, उसमें भी बहुत नुकसान होता है। ये धंधा करने के लिए इधर नहीं आने का है, यहाँ आत्मोन्नति के लिए आना है, ये लेन देन इधर नहीं करें।
आया समझ में? न पैसे की लेन देन करनी है ना कोई संबंध बनाने है।
अच्छा दीदी एक लास्ट प्रश्न, मैंने एक आदमी से पैसे लिए थे, इसके अंतर्गत एक आदमी से पैसे लिए थे लेकिन वो कहाँ चला गया है वो नहीं आता है तो मैं क्या करूँ? अगर मेरा शरीर छूट जाए तो उसके पैसे मेरे पास है तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ वो पैसे का, वो नहीं आता है?
वो अभी वो आदमी नहीं मिलता है तो मधुबन की भंडारी में डाल दे, वो तो हिसाब किताब चुप हो।
चलो अभी सबसे पहले यह सारे प्रश्न जो कि सार रूप में सबके सब प्रश्न आ गए हैं, कोई कोई के समय की वजह से नहीं ले पाए हैं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप सबके तरफ से मंच पर उपस्थित अपना इतना अमूल्य समय देकर के आपके प्रश्नों का समाधान करके आपके चित्त को प्रसन्न चित्त रखने वाले और यहाँ से बड़े उमंग और उत्साह से जाने की प्रेरणा देने वाले हमारे प्रेरणा मूर्ति आदरणीय संतोष दीदी का और आदरणीय गीता दीदी जी का हम बहुत दिल से खड़े होकर के एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद। बैठ जाए और आप सबका भी बाबा के घर से और दीदियों के तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाबा की याद में बैठेंगे।